नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 12 फरवरी 2021 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, म्यांमार में संकट पर मानवाधिकार परिषद में चर्चा, सत्ता पर कब्जा जमाने वाले सैन्य नेताओं पर प्रतिबंधों की मांग, कोविड-19 संक्रमणों और मौतों की संख्या में लगातार आ रही है कमी, लेकिन वैक्सीन के न्याय संगत वितरण और बुनियादी स्वास्थ्य उपायों को अपनाते रहने पर जोर, विज्ञान में महिलाओं व लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर साइंस और टेक्नोलॉजी में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने का आह्वान, और भारत के उत्तराखंड राज्य में ग्लेशियर फटने से भारी नुकसान, क्या कमजोर होते पारिस्थितिकी तंत्र है इस आपदा की वजह। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अंतर सरकारी संस्था यूएन मानवाधिकार परिषद में शुक्रवार को म्यांमार में मौजूदा संकट पर बैठक हुई। इस चर्चा के दौरान सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा जमा लिए जाने के जिम्मेदार नेताओं पर लक्षित प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई है, लेकिन ध्यान दिलाया गया है कि कोरोना वायरस संकट और अन्य प्रकार की मानवीय मदद को जारी रखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
मानवाधिकार परिषद HRC द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में म्यांमार में मनमाने ढंग से बंदी बनाए गए तमाम व्यक्तियों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की पुकार लगाई गई है। इनमें काउंसलर आंग सान सूची और राष्ट्रपति विन मिंत व अन्य नेता शामिल हैं। प्रस्ताव में आपात स्थिति खत्म करने की भी मांग की गई है। उप मानवाधिकार उच्चायुक्त नदा अल नाशीफ और विशेष रिपोर्टर थॉमस एंड्रयूज ने कहा कि तख्ता पलट के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए और म्यांमार के कमजोर समुदायों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए मदद और मानवीय सहायता जारी रहे। म्यांमार पर स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ थॉमस एंड्रयूज ने अपनी बात ये जोर देते हुए शुरू की कि मानवाधिकार परिषद का विशेष सत्र आयोजित किया जाना ही स्थिति की गंभीरता को दिखाता है, जिसमें परिषद के विचार के अनुसार म्यांमार में जो कुछ हुआ उसे शर्मनाक और गैर कानूनी कार्रवाई करार दिया जा सकता है, यानी वैधानिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार और उसके निर्वाचित नेताओं का तख्ता पलट। संयुक्त राष्ट्र की उपमानवाधिकार उच्चायुक्त नदा अल नाशीफ ने ध्यान दिलाते हुए कहा कि म्यांमार में मौजूदा संकट दंड मुक्ति की भावना से उपजा है, जहां सेना पर लंबे समय से कोई सिविल नियंत्रण नहीं रहा है। उन्होंने कहा,
For over 20 years, successive high commissioners and many eminent experts have briefed this council and its predecessor on violations committed by the country's military.
पिछले 20 से भी ज्यादा वर्षों के दौरान अनेक उच्चायुक्त और विद्वान मानवाधिकार विशेषज्ञ इस परिषद और उसकी पूर्ववर्ती संस्था को भी म्यांमार में सेना द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में जानकारी देते रहे हैं। इनमें से कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बहुत गंभीर अपराध भी हैं। इन मानवाधिकार उल्लंघनों और अपराधों से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण वहां के सैन्य नेताओं का दुस्साहस बढ़ा है और मौजूदा संकट भी उसी की परिणति है। उप मानवाधिकार उच्चायुक्त नदा अल नाशीफ के शब्द। उन्होंने अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय, जिनमें अधिकतर मुस्लिम हैं, उनके लिए भी चिंताएं व्यक्त की हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमणों और उनसे होने वाली मौतों की संख्या में दुनिया भर में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन आगाह भी किया है कि न्यायसंगत वैक्सीन वितरण के लिए यूएन की पहल कोवैक्स के समक्ष अब भी बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को जानकारी देते हुए बताया कि सावधानी को बरता जाना अब भी जरूरी है।
This declines appear to be due to countries implementing public health measures more stringently. We should all be encouraged, but complacency is as dangerous as the virus.
बहुत से देश बुनियादी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय कड़ाई से लागू कर रहे हैं और इसका असर संक्रमणों की संख्या में आई गिरावट में नजर आ रहा है। ये समय अभी ढिलाई बरतने का नहीं है और सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस का व्यापक स्तर पर फैलाव अब भी जारी है और उसकी नई किस्में भी उभर रही हैं। वायरस के अपना रूप बदलने से वैक्सीनों, दवाओं और परीक्षणों की क्षमता पर असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुए एक नए शोध के नतीजे दर्शाते हैं कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोरोना वायरस के नए प्रकार से होने वाले मामूली से सामान्य संक्रमण की रोकथाम में ज्यादा कारगर नहीं है। लेकिन यूएन एजेंसी के एक विशेषज्ञ पैनल ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की प्रभावशीलता पर उठे सवालों और चिंताओं को दरकिनार किया है और कहा है कि इसकी खुराकें दिए जाना सही है उन देशों में भी जहां कोविड-19 की नई किस्में उभर रही हैं। इस बीच कोरोना वायरस के स्रोत की जांच में जुटी स्वतंत्र विशेषज्ञों की टीम ने चीन में वुहान का अपना दौरा पूरा कर लिया है। कुछ ही दिन पहले विशेषज्ञों ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा था कि वायरस के किसी प्रयोगशाला से बाहर निकलने की संभावना बेहद कम है, लेकिन वायरस किस तरह फैला, इनमें से कुछ संभावित अवधारणाओं को खारिज किए जाने के तरीके पर सवाल उठे हैं। यूएन एजेंसी के महानिदेशक ने कहा,
Some questions have been raised as to whether some hypotheses have been discarded. Having spoken with some members of the team, I wish to confirm that all hypotheses.
वायरस के फैलाव के संबंध में सभी अवधारणाएं अभी पूरी तरह से खुली हैं। अभी और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। यूएन विशेषज्ञों की टीम इस संबंध में रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के उस फैसले की सराहना की है जिसमें कहा गया है कि इसराइल द्वारा काबिज फलस्तीनी इलाकों में जो गंभीर अपराध हुए हैं वे कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। ICC के अभियोजक अब गाजा, पूर्व यरूशलम और पश्चिमी तट में इसराइली कार्रवाई और फलस्तीनी सशस्त्र गुटों पर लगे गंभीर आरोपों की जाँच कर सकते हैं। पूरे ब्यौरे के साथ महबूब खान।
इसराइल द्वारा वर्ष 1967 से कब्जा किए हुए फिलिस्तीनी इलाकों में मानवाधिकारों की स्थिति पर विशेष रिपोर्टर माइकल लिंक ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से उन सभी को गहरी उम्मीद बंधी है जो कि मानते हैं कि ऐसे गंभीर अपराध किए जाने का जवाब क्षमादान नहीं उसके नतीजों को भुगतना है। इस फैसले के दायरे में संभावित युद्धापराधों के मामले भी शामिल हैं और इसे पूर्वी यरूशलम व गाजा सहित 53 वर्षों से काबिज इलाकों में दंडमुक्ति खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यूएन विशेषज्ञ ने ध्यान दिलाते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अग्रणी राजनीतिक अंग इसराइली कब्जे पर अपने प्रस्ताव लागू करा पाने में बार बार नाकाम रहे हैं। इस फैसले से रोम संविदा के तहत अपराधों के विश्वसनीय आरोपों की जांच कराए जाने और ICC में सुनवाई चरण तक पहुंचने का रास्ता अंततः खुल गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के अभियोजक अब अतीत में लगाए गए आरोपों की जांच कर सकते हैं। इनमें वर्ष 2014 में गाजा में लड़ाई, 2018-19 में प्रदर्शनों के दौरान हताहत हुए हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों और पूर्वी यरूशलम व पश्चिमी तट में इसराइल द्वारा बस्तियां बसाए जाने की गतिविधियां शामिल हैं। इनके अलावा ICC अभियोजक अब फिलिस्तीनी सशस्त्र गुटों पर लगे गंभीर आरोपों की भी जांच कर सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं व लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर साइंस और टेक्नोलॉजी में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने की पुकार लगाई है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
यूएन महासचिव ने इस दिवस पर अपने संदेश में कहा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमने इसे एक बार फिर देखा है। महिलाएं, जो कि कुल स्वास्थ्य कर्मियों की लगभग 70% हैं, वो महामारी से सबसे अधिक प्रभावित होने वालों में शामिल हैं और इस महामारी का मुकाबला करने के प्रयासों की अगुवाई करने वालों में भी। बीते वर्ष के दौरान लैंगिक असमानताएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि स्कूल बंद होने और घरों से ही कामकाज किए जाने का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर ही पड़ा है। यूएन प्रमुख ने ध्यान दिलाया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीनों से सीखने यानी मशीन लर्निंग में भी ये पूर्वाग्रह नजर आते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं और लड़कियों का विज्ञान से नाता है, लेकिन दकियानूसी सोच ने महिलाओं और लड़कियों को विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों से दूर कर दिया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा,
It's time to recognize that greater diversity fosters greater innovation. Without more women in STEM, the world will continue to be designed by and for men.
अब ये मानने का समय है कि ज्यादा विविधता से महान नवाचार के लिए हालात अनुकूल बनते हैं। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में और ज्यादा महिलाओं की मौजूदगी के बिना दुनिया की रूपरेखा पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए ही तय की जाती रहेगी। लड़कियों व महिलाओं के अंदर मौजूद क्षमताएं व संभावनाएं दबी ही रह जाएंगी।
बताया गया है कि स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से पुरुषों की तुलना में महिलाओं को मिलने वाले वेतन व आमदनी में अंतर को खत्म किया जा सकता है और अगले 10 वर्षों में महिलाओं की आमदनी 299 अरब डॉलर तक बढ़ाई जा सकती है।
भारत के बिहार राज्य में जलवायु सहनशील और कम कार्बन उत्सर्जन पर आधारित नीति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम और बिहार सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस सहमति के जरिए यूएन एजेंसी बिहार को कार्बन उत्सर्जन में कटौती लाने के लिए तकनीकी सलाह और समीक्षा सहित हर संभव मदद मुहैया कराएगी। हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने समझौते पर जानकारी के लिए भारत में यूएन पर्यावरण एजेंसी के प्रमुख अतुल बगाई से बात की।
अतुल जी, आज जो MOU साइन हुआ है बिहार गवर्नमेंट के साथ, उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए।
आज जो हस्ताक्षर किए हैं MOU पे बिहार सरकार के साथ, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक MOU कहा जा सकता है। यह पहली बार है कि यूनेप और एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐसे मुद्दे के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं जो कि न केवल बड़ा ज्वलंत इशू है और ज्वलंत मुद्दा है, पर पूरे देश में और पूरे विश्व में इसके ऊपर इस समय चर्चा हो रही है। ऐतिहासिक मैं इसलिए भी कहूँगा कि जहाँ पूरे विश्व में इसके बारे में चर्चा हो रही है, बिहार सरकार ने निर्णय किया कि इसके बारे में हमें कुछ करना है। और ये जो उनकी दूरदृष्टि और जो उनका इरादा, एक आगे की सोच जिसको कहेंगे, वो इस हस्ताक्षर वाले इवेंट को बहुत ही ऐतिहासिक बनाता है। ये एक MOU है जलवायु पर्यावरण के ऊपर कार्यक्रम करने का और निम्न कार्बन उत्सर्जन के ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाने का। तो इसमें हमारी एजेंसी एक्सपर्टीज जो उनके पास इस क्षेत्र में है विश्व स्तर पे और रीजनल स्तर पे बैंकॉक में और भारत स्तर पे, उसको समन्वित ढंग से लेकर पार्टनर्स के साथ बिहार सरकार की मदद करेगा अगले 2 साल ये एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो ये पहला एक दृष्टांत मैं कह सकता है कि एक प्रदेश सरकार ने इस तरह का एक कदम उठाया है।
तो अभी अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो अभी बिहार में क्या हालात हैं और अगले 2 साल में हम किस तरह के बदलाव देखेंगे?
आपने अगर कार्यक्रम में सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके माननीय पर्यावरण मंत्री बड़े विस्तार से बताया कि बिहार किन किन क्षेत्रों में, पर्यावरण के क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने हरियाली कार्यक्रम के बारे में बताया, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बताया, उन्होंने एयर पोल्यूशन के बारे में, जो उनकी 3 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं उसमें क्या क्या कदम उठा रहे हैं उसके बारे में बताया। जो MOU हम लोगों ने साइन किया है वो उसका परिणाम और परिणाम जो है वो 2 सालों में तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हमको इतना टाइम लगेगा इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाने का। पर चूंकि बिहार सरकार इस कार्य पर प्रतिबद्ध है और उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया है, हमको अवश्य ये खुशी है कि ये स्ट्रैटेजी जब तैयार हो जाएगी तो बिहार सरकार इसको आगे क्रियान्वित करने के लिए सही कदम उठाएगी और समन्वित ढंग से धनराशि भी एकत्रित करेंगे इसको कार्यान्वित करने के लिए। तो इसका जो प्रभाव है उसको तो कुछ साल लगेंगे, पर एक सही कदम है इसको, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का।
पौष्टिक आहार के स्रोत के रूप में जमीन की उर्वरता बढ़ाने और फसलों के कीड़ों का असर कम करने में दालों की महत्ता को रेखांकित करने के उद्देश्य से 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। दालें प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेष रूप से शाकाहारी भोजन खाने वाले लोगों के लिए या फिर उन लोगों के लिए भी जिन्हें मांस मछली या दूध दही पर आधारित खुराक खाने के बावजूद प्रोटीन प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता। दालें खुराक में फाइबर, विटामिन, जिंक जैसे खनिज पदार्थों के भी अच्छे स्रोत हैं। अनेक क्षेत्रों में किसान फसलों की उपज और जमीन की जैव विविधता बढ़ाने के लिए अपने खेतों में अन्य फसलों के साथ साथ दालों वाली बेलें या पौधे लगाते हैं। इनसे फसलों को ऐसी बीमारियों से दूर रखा जा सकता है जिनसे कीड़े पैदा होते हैं। दाल की फसलों के जरिए कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है और इस तरह दालें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को अप्रत्यक्ष रूप से कम करती हैं और अंततः जलवायु कार्रवाई में उनका योगदान होता है। विश्व दालें दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 2018 में की गई थी। यूएन महासभा ने दालों की महत्ता और टिकाऊ खाद्य उत्पादन में उनके योगदान को मान्यता देने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस स्थापित करने की घोषणा की। दालें बहुत से देशों में सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए नेपाल में कवाती एक ऐसा सूप है जिसमें 9 प्रकार की दालों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सूप प्रमुख त्योहारों और महोत्सवों के दौरान खाया पिया जाता है। भारत में उत्तराखंड प्रदेश के चमोली जिले में कुछ दिन पहले ग्लेशियर टूटने और उसके बाद अचानक बाढ़ आने से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कार्यालय की प्रमुख रश्मि बजाज ने यूएन न्यूज की अंशु शर्मा को बताया कि प्रभावित इलाके में पानी के तेज बहाव, मलबा और चट्टानों के कारण 2 जल विद्युत परियोजनाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। अंशु शर्मा ने रश्मि बजाज से बातचीत में जानना चाहा कि क्या ये आपदा इस इलाके में कमजोर होते पारिस्थितिकी तंत्रों का नतीजा है।
ये इलाका पारिस्थितिक रूप से बहुत नाजुक माना जाता है और लंबे समय से एनवायरमेंटलिस्ट यहाँ बांध और बिजली संयंत्रों जैसे भारी निर्माण के खिलाफ आगाह करते रहे हैं। तो क्या ये आपदा एक संकेत है और इस आशंका को पुख्ता कर रहा है?
ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 2 बिजली परियोजनाएं हैं, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और उसके थोड़ा ही आगे नेशनल NTPC का पावर प्लांट जो है, जो धौली गंगा रिवर के ऊपर है, ये दोनों ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है उसमें पूरे का पूरा प्रोडक्शन यूनिट, डैम और सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। जो तपोवन एरिया में NTPC का पावर प्रोजेक्ट है वहां पे भी खबर कोई खास अच्छी नहीं है। अब जैसा कि आपने कहा कि ये एक इको सेंसिटिव एरिया है, बहुत ही फ्रजाइल एरिया है, फ्रजाइल जोन है और कोई भी क्लाइमेट चेंज का असर इसके ऊपर बहुत जल्दी दिखने को मिलता है। जैसे कि कोई भी इंटेंस रेनफॉल हुआ या टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट इस तरीके के इवेंट से इम्पैक्ट दिखता है। और मुझे लगता है कि एक हमें जरूरत है कि हम कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन सामने लाएं जहां जिससे कि हम एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को बैलेंस करते हुए के साथ साथ काम करें।
पिछले सालों में क्या कुछ बदला है कि हालात बेहतर हो सके और जानो माल का नुकसान ना हो?
2001 से ही UNDP सरकार के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे काम कर रहा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में। 2013 में भी ऐसा ही एक इंटेंस रेनफॉल इवेंट हुआ था जिसकी वजह से एकदम से फ्लैश फ्लड आया और काफी ज्यादा जानो माल की हानि हुई थी। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको रिकवरी में काफी तत्परता से स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया है, कम्युनिटीज को सपोर्ट किया है और काफी तरह से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग हुई है उन एरियाज में। बट जैसे कि आपने कहा कि ये एक बहुत ही फ्रजाइल एरिया है और काफी यहाँ पे बार बार यहाँ पे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम आगे के लिए एक प्रिपेयर्डनेस की तरफ जाएं कि कैसे हम अर्ली मॉर्निंग सिस्टम्स लगाएं और प्रिपेयर कर पाए अपने आप को ताकि हम इन ऐसे इवेंट्स को हैंडल करने में और तत्परता से सक्सेसफुल हों।
एक मसला और है, ये मौसम सर्दियों का था और इस मौसम में हिमस्खलन देखने को नहीं मिलते हैं, ग्लेशियर टूटने का ये मौसम नहीं है, तो इन सब का कारण जैसा कि आपने कहा कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन है या हो सकता है, तो क्या जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में कुछ कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जलवायु, काफी एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन ही इसकी वजह हो सकती है, क्योंकि ये एक हैरानी की बात है कि सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर्स इतने हाई नहीं रहते हैं तभी भी एक ग्लेशियर से ये एवलांच टूटा और इसने ये इतनी बर्बादी कर दी, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन ही इसकी वजह है। उत्तराखंड जैसे फ्रिजाइल एरिया के लिए ये जरूरी है कि हर सेक्टर में हम क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज, जिसमें हम लोकल कम्युनिटीज, लोकल लोगों को साथ लेते हुए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए और गवर्नमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करते हुए कि कैसे हम लोग किस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या एक्टिविटीज करें ताकि कम से कम नुकसान हो किसी भी ऐसे डिजास्टर इवेंट में या कोई भी एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज इवेंट में। तो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन स्ट्रेटजी हर सेक्टर के लिए एक बहुत ही जरूरी है उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में यूएन विकास कार्यक्रम कार्यालय की प्रमुख रश्मि बजाज से बात कर रही थी अंशु शर्मा। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।